एक बहुत ही खूबसूरत नई वेब सीरीज लेकर आए हैं। लोग दोबारा कैसे जिंदा होंगे, कहाँ जमा होंगे, कैसे जमा होंगे, हिसाब कब शुरू होगा, स्केल कैसा होगा, जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, तारे झड़ जाएंगे और चांद सूरज बेनूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कौन बाकी रह गया। आसमान को जब बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो वो 40 दिन तक बारिश बरसाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही खूबसूरत नई वेब सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है कयामत के बाद, आफ्टर जजमेंट डे। हमने एक और वेब सीरीज पहले की थी जिसका नाम था कयामत की निशानियां। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप देखिए, कयामत से पहले क्या क्या होगा। और हम बहुत क्यूरियस होते हैं, बाज़ूकात बड़ा हमें तजस्सुस होता है कि इस दुनिया के फना हो जाने के बाद क्या होगा, लोग दोबारा कैसे जिंदा होंगे, कहाँ जमा होंगे, कैसे जमा होंगे, हिसाब कब शुरू होगा और किन लोगों का हिसाब होगा और कौन से ऐसे लोग होंगे जो हिसाब से बच जाएंगे, कौन कौन अल्लाह की बारगाह में शफात यानी सिफारिश करेगा, मीज़ान यानी स्केल कैसा होगा, पुल सिरात यानी ब्रिज ऑफ सिरात पर लोगों की क्या कंडीशन होगी, क्या कैफियत होगी, लिबाउल हम्द क्या है, हौज़े कौसर कैसा हौज है, और भी बहुत कुछ आप जानेंगे इस वेब सीरीज में। आखिरत के हवाले से दुरुस्त अकायद और इन दुरुस्त अकायद को जानने और अपनी इस्लामिक नॉलेज में इजाफा करने के लिए स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ आप शामिल रहिएगा। आज इस वेब सीरीज का हमारा फर्स्ट एपिसोड है और इंशाल्लाह जैसा मैंने बताया कि आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि जब कयामत कायम होगी और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने से ये दुनिया फना हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, तारे झड़ जाएंगे और चांद सूरज बेनूर हो जाएंगे, फिर मलकुल मौत, जी हाँ हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम जो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे, इलाही जिसे तूने चाहा उसके अलावा सब जमीनों आसमान वाले फना हो चुके हैं, यानी चंद यूं समझिए कि अफराद के अलावा बाकी दुनिया में सब दुनिया से जा चुके होंगे, सबको मौत आ चुकी होगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा अब कौन बाकी रह गया है, हालांकि वो खूब जानता है। मलकुल मौत अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब तू बाकी है, अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी हैं और जिब्राइल और मीकाईल और मैं यानी हजरत इसराइल कहेंगे मैं बाकी हूं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा अर्श उठाने वाले फरिश्ते फौत हो जाए तो वो भी फौत हो जाएंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा अब कौन बाकी है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे ऐ मेरे रब अब तू बाकी है, इसराफील और मैं बाकी हूं। फिर रब अज़्ज़वजल के हुक्म से अर्श हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से सूर ले लेगा और फिर इरशाद फरमाएगा इसराफील भी फौत हो जाए तो वो भी फौत हो जाएंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा अब कौन बाकी है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे ऐ मेरे रब तेरी जात बाकी है जिसे मौत नहीं आनी, आया अल्लाह मैं बाकी हूं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा तुम भी मेरी मखलूकात में से एक मखलूक हो, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बनाया तुमने उसे देख लिया, क्योंकि अब तो कोई नहीं था ना जिसकी रूह कब्ज कर रही है, तो इरशाद होगा अब तुम फौत हो जाओ। चुनाचे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी फौत हो जाएंगे, अब एक अकेला अल्लाह पाक बाकी होगा। नाज़रीन अब रब तआला सुभान अल्लाह, अब जो अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा ना, अगर इसको गौर से सुने तो वाकई वो गूस बम्स यानी रोंगटे खड़े कर देता है। अब दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ रब तआला की जात है और वो तीन बार ये ऐलान फरमाएगा, वो इरशाद फरमाएगा, एक क्वेश्चन गोया फरमाएगा, अनल जब्बारु लिमनिल मुल्कुल यौम, मैं जब्बार हूं आज किसकी बादशाही है, मगर नोबडी देयर टू आंसर दैट क्वेश्चन, उस दिन तो कोई जवाब देने वाला नहीं होगा ना, फिर खुद रब तआला जवाब इरशाद फरमाएगा और क्या फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अल्लाह की बादशाही है जो सब पर गालिब है, यानी सब कुछ फना होने वाला है और सब कुछ फना हो जाएगा। अल्लाह अकबर, आज लोग कर्रो फर और नमा बाजू का तो जीते ऐसे जैसे मरना नहीं है, लेकिन ये ऐलान बता रहा है कि कोई नहीं होगा, सिर्फ रब तआला की जात होगी। अब क्या होगा, सबसे आखिर में जिस हस्ती को मौत आएगी वो मखलूकात की रूह कब्ज करने वाले मलकुल मौत हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम है। इसके बाद रब तआला इस जमीन को दूसरी जमीन से बदल देगा, आसमानों को बदल देगा और जमीन को ऐसे फैला देगा कि इसमें ऊंचा नीचा कोई टेढ़ापन नहीं होगा, टोटल स्ट्रेट जमीन होगी। پھر اللہ پاک کے حکم سے مخلوق اس بدلی ہوئی زمین پر اس طرح آ جائے گی جیسے وہ پہلی والی زمین میں تھی، یعنی جو پہلے زمین میں دفن تھے وہ اس زمین میں دفن ہو جائیں گے، اور جو باہر تھے وہ اس پر بھی باہر رہیں گے، کیونکہ کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو دفن نہیں کیا جائے گا، وہ تو قیامت طاری ہو جائے گی، اور جو لوگ دنیا میں لوگ ہوں گے وہ اسی طرح زمین پر پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ اس نئی زمین پر آ جائیں گے۔ یہ زمین بالکل اسٹریٹ ہوگی، اور ایسی اسٹریٹ ہوگی کہ زمین کے کونے پر بھی اگر کوئی رائی کا دانا ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا، ٹوٹلی اسٹریٹ زمین ہوگی۔ اب اللہ کریم آسمان کو جب بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ 40 دن تک بارش برساتا رہے گا، یہاں تک کہ مخلوق پر پانی 12 12 ہاتھ کے برابر بلند ہو جائے گا، اتنا پانی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کریم باڈیز کو اگنے کا حکم دے گا، کمال دیکھیں، رب کی شان دیکھیں، اب باڈیز جو ہے وہ سبزیوں کی طرح اگنے لگ جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کے جسم پہلے کی طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں۔ وہ تو کن کا مالک ہے نا، وہ تو فرماتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے، وہ فرمائے گا زندہ ہو جائیں، تو عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں گے، سب سے پہلے دوبارہ زندہ ہونے والوں میں یہی فرشتے ہوں گے۔ پھر حکم الٰہی سے حضرت اسرافیل سور پکڑیں گے اور اپنے منہ پر رکھ لیں گے، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، تو وہ دونوں بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک روحوں کو بلائیں گا تو روحیں حاضر کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، اے مسلمانوں آپ کو مبارک ہو، ایمان والوں مبارک ہو، مسلمانوں کی روحیں نور سے چمک رہی ہوں گی اور باقی روحیں اندھیرے میں ہوں گی۔ اللہ کریم سب روحیں کو سور میں ڈال دے گا، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ دوبارہ اٹھنے اور جمع کرنے والی پھونک ماریں۔ بس وہ جب پھونک ماریں گے سور میں تو روحیں سور سے شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیں گی۔ پس روحیں زمین کے نیچے اپنی باڈیز کی طرف جائیں گی، اور ناک کے جو ہولز ہوں گے نا، ناک کے سوراخ سے داخل ہو کر جسم میں سرایت کر جائیں گی۔ اس کے بعد حشر برپا ہوگا اور لوگ جمع ہونا شروع ہوں گے۔ ویورز کیسی معلومات ہے، سنتے ہیں تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پھر سے وہ لوگ زندہ ہوں گے۔ ذرا غور کریں نا کہ دو نفخوں یعنی دونوں سوروں کے درمیان، یعنی ایک سور وہ جس میں سب کو موت آ جائے گی اور دوسری سور جس میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ خیر وقفہ جتنا بھی ہو، لیکن ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ہوگا کیسے کہ اتنا ٹائم پیریڈ گزر گیا ہوگا، باڈیز تو ڈیکمپوز ہو چکی ہوں گی، باڈی کے ٹائنی پارٹیکلز، چھوٹے چھوٹے ذرے زمین کے پارٹیکل کے ساتھ مل چکے ہوں گے، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ چکے ہوں گے، پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے کہ انسان کی ہر چیز گل جاتی ہے سوائے عجب الزم کے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور بروز قیامت اسی ہڈی پر مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ عجب الزم کے لفظی معنی ہے دم گچھ، عجب کے معنی ہے اصل، اور زم کا معنی ہے دم۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ، دیکھیں ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، انسان اسی پر بیٹھتا ہے، یہ باقاعدہ پلر کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے دیوار کے لیے بنیاد ہوتی ہے، اگر یہاں یہ ہڈی مراد ہے تو حدیث کے معنی پھر یہ بنیں گے کہ یہ ہڈی جلد فنا نہیں ہوتی، اور مٹی 100 سال کے بعد اس کو ڈیکمپوز کرتی یعنی گلاتی ہے، اور اگر اس سے مراد ہے اجزائے اصلیہ جو انسان کے جسم کی اصل ہیں تو وہ کبھی نہیں فنا ہوتے، اور یہ ایسے باریک کمپوننٹس، ایسے باریک اجزاء ہیں جو مائکروسکوپ سے بھی دیکھنے میں نہیں آتے۔ عربی میں انہیں اجزائے لا یتجزا یعنی انڈیویزبل کمپوننٹس، یعنی سمجھے کہ یہ ختم نہیں ہوتے، انہیں کہا جاتا ہے۔ انسان چاہے جہاں بھی چلا جائے، جس بھی حالت میں ہو، مگر یہ کمپوننٹس ویسے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ غذا اور خون میں بھی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ انہی اجزاء سے انسان پہلے بھی بنا تھا اور آئندہ بھی بنے گا۔ دیکھیں نا آج کل ڈی این اے کی بات ہوتی ہے، بالکل مرے ہوئے کتنا سال ہو جاتا ہے، بلکہ اب تو کئی کئی سال پرانے ڈھانچے ملتے ہیں، تو اس کے میڈیکل کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا تھی، موت کا سبب کیا تھا۔ تو جب اتنی ساری آج سائنس نے ترقی کر لی ہے، جو 100 سال 200 سال بعد کے بعد ڈھانچوں پر تحقیق کر لیتی ہے، تو وہ تو خالق کائنات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے کہ کچے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کا بروز قیامت حشر ہوگا۔ حضرت اکرمہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، بلا شبہ جو لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، پھر ان کا گوشت مچھلیاں نوچ لیتی ہیں، پھر ان میں سوائے چمکتی ہڈیوں کے کچھ نہیں رہتا، پھر سمندر کی موجیں ان ہڈیوں کو الٹا پلٹا رہتی ہیں، الٹتی پلٹتی رہتی ہیں، تاکہ انہیں خشکی پر ڈال دیتی ہیں، پھر وہ ہڈیاں ایک عرصے تک وہاں پڑے رہنے کے سبب گل سڑ کر خستہ اور پارا پارا ہو جاتی ہیں، چنانچہ وہاں سے اونٹوں کا گزر ہوتا ہے تو وہ انہیں کھا کر چل پڑتے ہیں، اور پھر مینگنیوں کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پڑاؤ کرتے ہیں اور ان مینگنیوں کو اٹھا کر ان سے آگ جلا کر انہیں بھی راکھ کر دیتے ہیں، پھر ہوا چلتی ہے اور اس راکھ کو زمین پر بکھیر دیتی ہے۔ अब नाजिर इतना कुछ खत्म हो गया, यानी इतनी सूरतों में वो जिस्म बदल गया, अब राख भी हो गया, राख भी उड़ गई हवा के जरिए। मगर अब क्या होगा जब सूर फूका जाएगा ना, तो ये राख हो जाने वाले लोग और कब्रों में दफन लोग सब निकलेंगे, अल्लाह सबको फिर बॉडी की शक्ल देगा, उनमें रूहें दाखिल हो जाएंगी। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस की चट्टान पर खड़े होकर ये ऐलान करेंगे, ऐ गली सड़ी हड्डियों, टुकड़े टुकड़े हो जाने वाली खालों और बिखरे हुए बालों, अल्लाह पाक तुम्हें हुक्म देता है फैसला कर देने वाले हिसाब के लिए जमा हो जाओ। अब आइए हम कुछ और आगे चलते हैं। अब यह एक और बात समझनी कि अजसाम जैसे दुनिया में थे ना, वैसे ही अपनी रंग और औसाफ के साथ, क्वालिटीज के साथ दोबारा लौटाए जाएंगे। यानी बेशक हजारों साल हो गए कब्र में, लेकिन जब वो उठेंगे तो रंगो नस्ल भी वही होगी, उनके औसाफ भी वही होंगे। और कब्रों से उठाने के बाद जो सूर फूका जाएगा ना, वो काफी तवील आवाज होगी। इस सूर का इब्तदाई हिस्सा लोगों को जिंदा करने के लिए होगा और बाद वाला हिस्सा उन्हें कब्रों से निकालने के लिए होगा। चुनाचे सूर का वो हिस्सा जो उन्हें जिंदा करने के लिए होगा, उसे तो वो नहीं सुन सकेंगे, अलबत्ता सूर का वो हिस्सा जो उन्हें कब्रों से निकालने के लिए होगा, वो उसे सुनेंगे, लिसन करेंगे। रिवायत में आता है कि कयामत के दिन लोग अपनी अपनी कब्रों से बगैर लिबास के, नंगे पांव और बगैर खतना किए हुए उठेंगे। समवन विल बी नो फुट, समवन विल बी ऑन फुट, समवन विल बी ऑन राइड। कोई पैदल होगा, कोई सवारी पर होगा, कोई सवारी पर अकेला होगा, किसी पर तीन चार या दस दस अफराद भी होंगे। जो नॉन बिलीवर होंगे, गैर मुस्लिमीन होंगे, उन्हें तो मैदान मैशर ले जाने के लिए किसी को मलाइका घसीट कर ले जाएंगे और कुछ लोगों को आग जमा करेगी। हदीसे पाक के मुताबिक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से एक बार बड़ा कमाल का इशारा फरमाया। नबी पाक ने मुल्क के शाम की तरफ इशारा करके फरमाया कि तुम्हारा हशर वहां होगा। और इसी तरह एक रिवायत में आता कि बिलाशुबा तुम्हारा हशर बैतुल मुकद्दस में होगा। तो इन हदीसों से यह पता चलता है कि जो मैशर का मैदान सजाया जाएगा ना, वो बैतुल मुकद्दस के करीब, ये पूरा मुल्क शाम है ना, अब इसकी बाइफरकेशन अब आजकल हो गई है, लेकिन यूं समझ लीजिए कि बैतुल मुकद्दस के करीब जो है ये पूरा मैदान मैशर सजाया जाएगा। बरोज़े मैशर की ज़मीन कैसी हमवार होगी, कितनी प्लेन एंड स्ट्रेट होगी, जैसे मैंने बताया कि राई का एक दाना भी कोने पर रखा होगा तो वो दूसरे किनारे से दिखाई देगा। मगर एक और अमेजिंग बात है कि उस दिन जो जमीन होगी ना, वो हमारी तरह रॉक की या मिट्टी की नहीं होगी, कॉपर की होगी, तांबे की होगी। अल्लाहु अकबर। और सूरज आज कितना दूर है? एक तहकीक के मुताबिक 93 मिलियन माइल्स अवे है। जी हां, 9,30,00,000 माइल्स। और उस दिन एक मील की मुसाफत होगा। आप इमेजिन तो करें, गर्मी का आलम क्या होगा, ये कैसे बियरेबल कैसे होगा। तो जरा गौर कीजिए कि इतना डिस्टेंस, 93 मिलियन माइल का डिस्टेंस के बावजूद भी सूरज की पुष्ट हमारी तरफ है, लेकिन जब कभी गर्मियों में हमारा चेहरा उसके सामने आ जाए और गर्मी का मौसम हो, तो घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। उस वक्त एक मील के फासले पर होगा और उसकी पुष्ट नहीं, उसका मुंह हमारी तरफ होगा। हम सोच भी नहीं सकते गर्मी का आलम क्या होगा। और आज जमीन मिट्टी की है, उसके बावजूद हम धूप में नंगे पैर जमीन पर खड़े नहीं रह सकते। उस वक्त कॉपर की जमीन होगी, सूरज इतना करीब होगा, वो हीट कितनी होगी, वो टेम्परेचर कितना होगा। और उस गर्मी और उस हालत में स्वेटिंग, पसीना इस कसरत से निकलेगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि हम देखें ना, किसी जमीन पर पानी डालें तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, मगर एक लिमिट तक एब्जॉर्ब होता है, फिर वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। बताया गया इतना पसीना निकलेगा कि पहले 70 गज जमीन उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगी, मगर उसके बाद जमीन में अब ये सलाहियत नहीं रहेगी कि वो कुछ और मजीद जज्ब कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। अब वो पसीना जमीन पर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होगा। और रिवायतों में आता है किसी के टखनों तक उसका पसीना होगा, किसी की नीज यानी घुटनों तक पसीना होगा, और किसी की कमर तक पसीना होगा, किसी के सीने तक, और कोई गले गले तक पसीने में डूबा होगा। अल्लाह अकबर। और काफिरों के बारे में आता है, गैर मुस्लिमों के बारे में आता है कि मुंह तक चढ़कर लगाम की तरह उसको उसका पसीना जकड़ लेगा, जिसमें वो डुबकियां खा रहा होगा। और प्यास का आलम क्या होगा, थर्स्ट का आलम क्या होगा। आज जून जुलाई की गर्मी में पानी पी पी के थक जाते हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझती, मगर कयामत के दिन हालत ये होगी कि बाजों की जबानें बूझ से बाहर निकल आएंगी, दिल उबल कर गले को आ जाएंगे। अल अतश, अल अतश, हाय प्यास की सदाएं बुलंद हो रही होंगी। व्यूवर्स, यहाँ एक बात बड़ी अहम है कि तमाम तकालीफ और परेशानियाँ अपने अपने आमाल के मुताबिक होंगी। हाँ, जिसने चांदी सोने की ज़कात ना दी होगी, उस माल को खूब गर्म करके उसकी करवट, पेशानी और पीठ दागी जाएगी। फिर से जानवरों की ज़कात ना दी होगी, उसके जानवर कयामत के दिन खूब तैयार होकर आएंगे और उस शख्स को वहां लिटाएंगे और अपने सींगों से मारते और पांव से रोनते हुए उस पर गुजरेंगे। जब इसी तरह सब गुजर जाएंगे फिर उधर से वापस आकर यूं ही उस पर गुजरेंगे। ये जानवर इसी तरह करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हिसाब खत्म ना हो जाए। ये तमाम तकालीफ और परेशानियां अपने अपने आमाल के मुताबिक होंगी। जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे उनके लिए इतना दिन भारी नहीं होगा। हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, बरोज़े कयामत लोगों को जमा किया जाएगा, इस कदर भूखे होंगे कि पहले कभी इतने भूखे ना थे, ऐसे बेलिबास होंगे कि इससे पहले कभी ऐसे बेलिबास ना हुए, ऐसे प्यासे होंगे कि उससे पहले कभी ऐसे प्यासे ना हुए, ऐसे थके हारे होंगे कि उससे पहले कभी ऐसे थके हुए ना होंगे। जिसने अल्लाह पाक के लिए किसी को खिलाया होगा, अल्लाह पाक उसे कयामत के दिन खिलाएगा। जिसने अल्लाह पाक के लिए किसी को पिलाया होगा, अल्लाह उसे कयामत के दिन पिलाएगा। जिसने अल्लाह करीम के लिए किसी को लिबास पहनाया होगा, रब्बे करीम उसे लिबास पहनाएगा। और जिसने अल्लाह के लिए अमल किया होगा, अल्लाह पाक उसे काफ़ी होगा। जिसने अल्लाह पाक के दीन की मदद की होगी तो अल्लाह करीम उस दिन उसे राहत अता फरमाएगा। ज़रा गौर कीजिए नाज़रीन, ज़िंदगी में ऐसे काम करने हैं, लोगों की खिदमत करें, किसी को खाना खिलाते रहें, किसी को पिलाते रहें, प्यासे को पानी पिला दिया करें, बेलिबास को लिबास दे दिया करें। क्या मालूम ये नेकियां कयामत के दिन ऐसे काम आ जाएं कि हमें वहाँ अल्लाह की नेमतें मिल जाएं, हम उस तकलीफ़ से बच जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रेफरेंसेस भी मिल जाएं कि कुछ बातें कुरान से हुई हैं, कुछ अहादीस से हुई हैं, कुछ बुजुर्गाने दीन के अकवाल हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो हमारे रेफरेंसेस भी ले लीजिएगा। और नाज़रीन, जिस तरह मैंने बताया आपको कि हमारी एक बहुत खूबसूरत वेब सीरीज़ कयामत की निशानियाँ, जिसको मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा, अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उसको भी देखें। कयामत से पहले क्या होगा, बड़ी डिटेल में हमने कई एपिसोड्स में उसे बयान किया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन, बातें बहुत सारी करनी है आपसे, लेकिन मामला भी तो बहुत बड़ा है ना। कयामत कैसे तारी होगी और फिर उस दिन लोगों के साथ मामलात क्या होंगे, ये तो अभी पहली एपिसोड है ना। अगले एपिसोड में हम ये मालूम करेंगे कि मुख्तलिफ लोग मैशर में जब आएंगे तो उनकी कैफियत क्या होंगी, कंडीशंस क्या होंगी, बड़ी अमेजिंग बातें उसमें। और ये भी जानेंगे कि किन किन हालतों में लोग अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।